ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम भागवत भक्त प्रहलाद महाराज महाजन की भगवान नरसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए जो प्रार्थनाएं हैं उनमें आज 45वें नवे अध्याय के श्लोक का रसास्वादन करेंगे। ये श्लोक कल भी पाठ हुआ है यहां और आज भी इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए श्लोक की आवृत्ति कर लीजिए। यनमय थुनादि ग्रहमय धि सुखम हितुच्छम कंडो येने करयोर इव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाज कंडो वद मनसजं विषयेत धीरा सो कल क्योंकि आपने इसका पाठ किया है तो इसकी आवृत्ति न करके इसके शब्दों का पहले रस आस्वादन करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी ने शब्द अर्थ में ही बहुत उदारता से तात्पर्य दिया है, शब्द अर्थ में तात्पर्य दिया है। इसका आप भाव देखिए। यत जो, अब जो के साथ प्रभुपाद ने लिखा है इंद्रिय तृप्ति के निमित्त हैं। और फिर लिखा है मैथुन आदि काम चर्चा काम साहित्य का पठन या विषयी जीवन का भोग घर में या बाहर, यथा क्लब में। अब देखो ये शब्द में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो समाज में हो रहा है उसको इस शब्द से प्रकाशित करके समाज समझाया है। अब शब्द है गृह मेधि सुखम, परिवार समाज मैत्री इत्यादि ये से अनुरक्त रहने के आधार पर सभी प्रकार का भौतिक सुख। देखो इसमें प्रभुपाद ने गृह मेधि को ऐसे नहीं लिखा है कि केवल शादीशुद्ध, लेकिन इतनी बड़ी परिभाषा लिखी है। गृह मेधि कौन है? परिवार समाज मैत्री इत्यादि से अनुरक्त रहने के आधार पर सभी प्रकार का भौतिक सुख। प्रभुपाद ने बहुत ध्यान पूर्वक समाज के अंदर जो दोष हैं उनको शब्द अर्थ में समझाने का प्रयास किया है, और फिर लिखते हैं ही निस्संदेह तुच्छम तुच्छ गण निगण्य कंडुये नैना खुजलाने से कारवयो हो, दोनों हाथों के खुजली दूर करने के लिए एवा सदृश दुख दुखम विभिन्न प्रकार के दुख इंद्र तृप्ति के खुजली के पश्चात होने वाले त्रपयन्ति तुष्ट हो जाते हैं न कभी नहीं। इहा भौतिक इंद्रिय तृप्ति में कृपणाः मूर्ख व्यक्ति बहुदुख भाजः विभिन्न प्रकार के दुखों को प्राप्त कंडुतिवत यदि ऐसे खुजलाहट से सीख ले सके मनसिजम जो मात्र मानसिक कल्पना है वास्तविक सुख नहीं होता विषहेता तथा ऐसे खुजलाहट सहन करता है धीरः अत्यंत पूर्ण तथा धीर व्यक्ति बन सकता है। विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई है। ग्रह मेधी अर्थात तथा कथित ग्रस्त जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है सोचते हैं कि ये खुजलाना सर्व उत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में ये दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं बारंबार इंद्रिय भोग करने पर ही तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर है और इस खुजलाहट को सह लेते हैं उन्हें मूर्खों तथा धृतों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। तात्पर्य भी कल आपने पढ़ा है पूरा। तो इस श्लोक में कुछ श्लोक के अंदर एक शब्द, तो अंतिम शब्द को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। विषय है तधीरा। कहीं और ये शब्द पढ़ा है आपने शास्त्र में? शिक्षा अष्टम का पहला श्लोक है विषय है तधीरा। शिक्षा अष्टम का पहला श्लोक है जो इनको सह सकता है, उपदेशामृत में, उपदेशामृत का पहला श्लोक है वो जिसमें वेग है, वेग जो छह वेग हैं उसको जो सह सकता है। उन छह वेगों में एक वेग ये भी है, इन उपस्थ इंद्री वेग। ये जो उपस्थ इंद्री वेग है, अब वेग शब्द इसको कहा है स्वाभाविक है, परंतु वेग जो है वो खराब है। ये दो बातें हो गई। तो विषहेत धीरा से ये कहा गया है, जो धीरा शब्द और बहुत जगह पे आया है, भगवत गीता में धीरा कहाँ आया है? देहिन अस्मिन् यथा देह कौमार यौवनम जरा तथा ध्यानत्र प्राप्ति धीरस तत्र नमो यति। इसका अर्थ है जो शरीर के स्तर पे नहीं है वो धीरा है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो शरीर के स्तर पे नहीं है, जो आत्मा के स्तर पे है वो धीरा है। और हमने ईशो उपनिषद में धीर शब्द लिखा है कि धीरू से जो शिक्षा ग्रहण करता है वो संसार में फंसता नहीं है। वहां धीर की परिभाषा है परंपरागत जो दीक्षित है और शिक्षित है वो धीर है। तो पहले तो ये विषहेत धीर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको यहां इसके विपरीत शब्द दिया है कृपण। तो धीर का दूसरा अर्थ ब्राह्मण भी हो जाएगा, क्योंकि कृपण के विपरीत शब्द ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण हम किसको कहते हैं? जो दीक्षित है और जो वेद शास्त्र का पठन पाठन करता है, गुरु के निर्देश में रहता है। तो कृपण की क्या परिभाषा है? जैसे कृपण, कृपण को यहां प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में क्या लिखा है? मूर्ख। वैसे कृपण को क्या कहते हैं सामान्य? सामान्य कृपण का क्या अर्थ है? कंजूस। और उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? गार्गी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ भगवत गीता में क्या लिखा है? मानव जन्म का सौभाग्य प्राप्त होके जो आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता है वो कृपण है। यह है कृपण का परिभाषा शास्त्र में। गार्गी कहती हैं जो मानव जन्म जैसा दुर्लभ देह प्राप्त करके अगर आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता है वो कृपण है। अब इस ये दो शब्द हो गए, विषहेत धीरा हो गया, कृपण हो गया। अब इस श्लोक में शब्द समझना है पहले शब्द को ही देखें, यन मैथुन आदि सुखम, यत मैथुन आदि ग्रह मेधीना सुखम ही तुच्छम। ग्रह मेधी तो एक दूसरा शब्द है गृहस्थ, गृहस्थ है आश्रम, और ग्रह मेधी है पशु की तरह भोग में लगा हुआ व्यक्ति। तो ये ग्रह मेधी, एक तो पहला ये है कि सीधा ब्रह्मचारी का नाम ही नहीं है, ये ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी को तो ये सोचना ही नहीं है। ये ग्रह मेधी की बात करी, अब ऐसे कहा जाए तो ये सारे समाज की बात है, ये मानव समाज की बात है। प्रहलाद महाराज, इससे पहले श्लोक में क्या कहा हुआ है? किसी को इससे पहला श्लोक याद है? जो अपने उद्धार के लिए तपस्या करता है लेकिन परमार्थ का प्रचार नहीं करता है, तो परमार्थ का प्रचार किसके लिए करना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए जो संसार में फंसे हुए। तो प्रहलाद महाराज इससे पहले कहते हैं कि ऐसे लोगों का उद्धार करने का काम कौन करेगा? जो ग्रह मेधी हैं। ग्रह मेधी कौन होता है? जो ब्रह्मचार्य आश्रम से शिक्षित होकर नहीं आता है, जो ब्रह्मचार्य आश्रम से शिक्षित होकर आता ही नहीं है वो ग्रह मेधी है। अब बताइए कि दुनिया के अंदर प्रभुपाद जी एक भगवद गीता में लिखते हैं कि ब्रह्मचारी नाम ही आजकल के शिक्षा पद्धति से बाहर है, कहीं स्कूल कॉलेज में ये नाम नहीं है। है कहीं नाम ब्रह्मचारी शब्द कहीं सुना है? तो फिर कहां से आपको गृहस्थ आश्रम मिलेगा? तो गृहस्थ को आश्रम कहा और ग्रह मेधी की निंदा क्यों कही की जा रही है? प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ में गए हैं आगे जाकर, ये निंदा कर, ये जो कह रहे हैं श्लोक 5 वर्ष के हैं, लेकिन फिर ये स्वयं जो है गृहस्थ आश्रम में गए हैं, गृहस्थ आश्रम में गए हैं, ग्रह मेधी नहीं है। ग्रह मेधी धीरा धीरा विषहेत धीरा है, विषय है ग्रह मेधी नहीं, ग्रस्त विषयेत धीरा है। उसको मालूम है कि मुझे वानप्रस्थ में जाना है, मुझे सन्यास भी लेना है, क्योंकि ये प्रणाली है। ये आया कहां से आखिर? ये जो शब्द लिखा है मैथुन सुखम ग्रह मेधी, मैथुन शब्द यन मैथुन आदि, ये जो मैथुन शब्द है ये शब्द आया कहां से? कोई कहे तो भाई जन्म आदि से जत है, ये भगवान में नहीं होता तो हमें हमारे अंदर कहां से आता? बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है, ये भगवान में होगा तब हम में आया है ना, नहीं तो कहां से आएगा? क्या विचार है आपका? जन्मादि से यतः, जो कुछ आपको दिख रहा है वो तो भगवान में है। और इसलिए आपको बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे जो कहेंगे अरे भाई आप कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण तो रासलीला करता है, 16,108 रानियों से शादी करता है, कहते हैं ना लोग ऐसे। प्रभुपाद से ऐसे किसी ने पूछा था, शिष्य ने, प्रभुपाद कृष्ण कृष्ण पुरुष है और पुरुष भोगता है और इतना भोग करने का सामर्थ्य है इसलिए तो भगवान है। और फिर कहा
भोग करने की इच्छा से,
प्रभुपाद ने फिर कहा तुम कहां से आए? आसमान से टपके हो? पेड़ से गिरे हो? अरे भाई तू भी किसी माता पिता के मैथुन से पैदा हुए हो कि नहीं? प्रभुपाद ने ये कहा, समझ में आ रहा है? तुम कहां से आए? लेकिन क्या तुम ये पब्लिक में जाके कहते हो कि मेरे माता पिता के भोग से मैं पैदा हूं, उसका आदर करते हो कि नहीं करते हो? भाई ऐसी बात तो नहीं करते हैं ना हम दुनिया में। तो फिर तुम अपने माता पिता का इतना आदर करते हो, जगत के माता पिता कृष्ण का इतना आदर नहीं कर सकते हो क्या? हाँ, उसके लिए ऐसी बात कहने की मूर्खता क्यों करते हो? ये भाई वे उधर नहीं है तो यहां कहां से आया? आया कहां से ये? अगर उधर है तब आया ना, लेकिन उधर उधर शुद्ध अवस्था में है, वहां प्रेम है और यहां काम हो गया, बस इतना ही अंतर है। वहां प्रेम है, यहां काम है, और दोनों में दिन रात का अंतर है, सोहे और सोने और लोहे जितना अंतर है। तो पहले तो ये है कि ये अपने आप में प्रक्रिया जो है वो तो सृष्टि के लिए भगवान का सहयोग है, परंतु फिर उसके लिए एक शब्द आ गया कांडुनेयन, ये है खुजली। अब खुजाओगे तो न तृप्यंती, लेकिन इससे पहले भी अभी उसी यन मैथुन आदि आदि की प्रभुपाद ने परिभाषा क्या लिखा है? क्लब में जाना, घर में बाहर, ऐसे पुस्तक पढ़ना, ऐसे चित्र देखना, ये सब आदि में आ गया। 8 प्रकार का मैथुन 8 प्रकार का लिखा हुआ है शास्त्रों में, संभोग की बात नहीं है, और बहुत से बातें इसमें आती, सुनना केवल ये भी उसमें आता है, चर्चा करना भी उसमें आता है। प्रभुपाद ने उस दृष्टि से 7-8 लिखा है आदि करके, क्वेश्चन आदि, गृहमेद सुखम ही तुच्छम, फिर तुच्छ सुख क्यों लिखा है? तो ये सुख के लिए नहीं है, ये भोग सुख के लिए नहीं है, जैसे खुजली सुख के लिए होती है क्या? हाँ, खुजली सुख के लिए नहीं तो नहीं होती है ना, कुछ सहने के लिए होती है, पीड़ा है, सहनी है, तो ये एक खुजली है, और इससे कोई तृप्त नहीं होता, ये कभी किसी को तृप्त नहीं करती है। आपने देखा है खुजली कभी किसी को थोड़ी हुई है, खुजाओगे अच्छा लगेगा, और खुजाओगे अच्छा लगेगा, और खुजाओगे अच्छा लगेगा, और चौथी बार खुजाओगे तो खून निकल के आएगा, और फिर दर्द होगा, और फिर वो पीड़ा होगी। तो इसका मतलब है कि खुजली तो है, लेकिन खुजाओगे तो दुख भोगोगे। तो यहां दुख तुच्छ लिखा है, तो प्रभुपाद ने इस तुच्छ के प्रति दूसरे सुख की परिभाषा तात्पर्य में की है, दूसरे सुख की परिभाषा की है प्रभुपाद ने तात्पर्य में। कौन सी, कहां की? कल आपने पढ़ा था, कहां की है? अंत में जाइए देखिए, एक श्लोक पढ़ा है, तुच्छ सुख को छोड़ के उत्तम सुख कौन सा है? यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे, ये है उत्तम सुख। तो तुच्छ सुख और उत्तम सुख की तुलना तो पहले कर लो, आपको कौन सा सुख चाहिए? तुच्छ सुख चाहिए कि उत्तम सुख चाहिए? देखो भोग का ये दुख दुखम फिर लिखा है। अब जो ब्रह्मचारी है वो तो शांत रहे, थोड़ा समझे नहीं, उसको समझ में आए ना आए छोड़ दीजिए। ये पुरुष जो बैठे हैं उनसे पूछो कि ये भोग दुख देता है कि सुख देता है? मां को बच्चे को जन्म देना है, कितना दुख आता है, कभी उसकी पीड़ा का तुलना किए? तो दुख है कि नहीं है? और फिर उनके पालन पोषण के लिए गधा मजूरी करनी पड़ती है, वो कितना दुख है, उसका कभी अनुभव किया है? एक दुख के बाद दूसरा दुख है, ये सच है कि झूठ है? इसका मतलब कि इसमें सुख नहीं है, तुच्छ सुख है। इस सुख के गर्भ में दुख जन्म लेता है। ये फिर भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? ये संस प्रसजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत तुकोन्ते नतेषु रमते बुद्धा। ये इंद्रियों के सुख दुख का जन्म स्थान है, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं एक खरीदो एक मुफ्त में मिलेगा, बाय वन गेट वन फ्री। आप सुख लो, दुख आपके गले में पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो दुख दुख हम दो बार क्यों कहा? और फिर प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि जो ये खुजली करेगा जीवन में, अंत में वो और दुख भोगेगा। थोड़ा सुख हो ना हो, लेकिन दुख उसका बहुत भारी हो जाएगा, उसको भोगना मुश्किल हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद ने कहा ये आपने खुजली को खुजाना छोड़ा है। एक भक्त प्रभुपाद जी को चमर ऐसे पंखा झुला रहा था, मोर पंख या चमर, प्रभुपाद जी राधा माधव गा के फिर उसको देखा, फिर गाया, फिर उसको देखा, तो उसने समझा मैं गलत कर रहा हूं, पता नहीं प्रभुपाद जी मुझे क्या देख रहे हैं। राधा माधव के बाद प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हें एक बार खुजली हुई तुमने की, दोबारा खुजली हुई तुमने की, तीन बार तुमने खुजली की, चार बार तुमने खुजली की, फिर क्या खुजली से सुख मिला इसलिए छोड़ा? नहीं, तुम खुजली से दुखी हो गया इसलिए तुमने छोड़ा। तो छोड़ेगा कब? याद का न तृप्यंती, ये खुजली कभी किसी को तृप्त नहीं कर सकती है, केवल दुख को बढ़ाएगी। कोई इससे तृप्त नहीं हुआ। ये प्रहलाद महाराज एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात कह रहे हैं। ये समाज को मानवता के मार्ग के ऊपर चलाने के लिए बात कर रहे हैं, जो पशु के स्तर पे हो गया है। पशु में फिर भी नेम होता है, पशु बेनेम नहीं होता है, केवल मानव है जो नेम से बाहर निकल गया है। तो इस श्लोक में जो शब्द है ग्रह मेधी और फिर है, इसका मतलब ग्रस्त होना चाहिए और इस सुख को तुच्छ ही समझना चाहिए। तो उत्तम सुख कौन सा है उसका पता प्रभुपाद जी ने दे दिया यमुना आचार्य के भाव में। अब हम किरपण है तो तुच्छ सुख के पीछे जाएंगे और धीर है तो उत्तम सुख के पास जाएंगे। अब हमारे पास प्रभुपाद ने श्लोक में समाज को एक अवसर दे दिया है कि कौन सा सुख तुम चुनना चाहते हो, तो कौन सा सुख चुनना चाहिए? उत्तम सुख को चुनना चाहिए। तुच्छ सुख को क्यों चुनेंगे? और वो सुख जिसके साथ दुख जुड़ा हुआ है वो उत्तम सुख भी नहीं है, वो तो आनंद है जिसमें कोई कभी कमी नहीं होगी। भगवान के चरण चरणों के सुमरण में जो आनंद है उसकी तो कभी कमी उसमें होने वाले नहीं है। तुच्छ सुख तो समाप्त होने वाला है। तो भाई भगवान ने सृष्टि बनाई क्यों? कोई कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन उनको अगर अभी आप कहोगे कि भोग क्यों करते हो तो कहते अरे भगवान ने बनाया ही तो इसके लिए है, तब उनको भगवान याद आ जाएगा। वैसे नहीं मानेंगे भगवान को, लेकिन कहेंगे अरे भगवान ने ये इसलिए तो बनाया है, ये तो हमारी प्रकृति, भगवान ने बनाया ही इसलिए, तब भगवान याद आए। इसका मतलब अब देखिए, लोग कभी कभी कहते कृष्ण बहुत अच्छा, भगवत गीता को हम मानते हैं, लेकिन भागवत में ये रासलीला और ये भगवान का गोपियों के साथ चुंबन आ दिए, इसको निकाल दो, बहुत अच्छा है कृष्ण। बोला इसको निकाल क्यों दे? बोला ये हम करना चाहते हैं। ये है उनकी बदमाशी। उनका ये मतलब नहीं है कि कृष्ण से ये निकाल दो, वो कहते हैं कृष्ण को ये नहीं को, ये हमारे लिए दो, ये जो ईर्ष्या है ये बहुत बड़ी भारी ईर्ष्या है। असल में हम करें तो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण करें तो खराब है। ये जो ईर्ष्या है ये इसमें इसका कारण है सारा। और ऐसे ऐसे गीता प्रेस गोरखपुर में एक बार जो उनके एक जिसका कहा जाए संस्थापक थे, उसने कहा ये रासलीला को नहीं छापेंगे, और दूसरे उनके सहयोगी थे, नहीं बोला इसकी महत्व को आप नहीं जानते हो, ये छापना ही पड़ेगा। उन्होंने बहुत बड़ा लेख लिखा था उसके ऊपर, हनुमान प्रसाद पोदार ने लिखा था छापना चाहिए, और गोयनका जी ने कहा नहीं इसको नहीं छापेंगे, समाज समझ नहीं पाएगा। लेकिन हनुमान प्रसाद ने लिखा था ये तो बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी ने तो एक तात्पर्य में लिखा है ये सृष्टि भगवान ने की है, बद्ध प्रलय के समय में सोए हुए जीवों को भगवान के साथ रास लीला करने के लिए। ये भागवत के तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय में प्रभुपाद का एक तात्पर्य है कि भगवान ने सृष्टि क्यों की है। ये भगवान की करुणा है, कृपा है कि बद्ध जीव जो प्रलय काल में सुसुपति में सोए हुए थे उनको जगा के एक और मौका दिया, अवसर दिया कि भगवान के साथ रस पान करके रास करें। इसका मतलब हम सबको भगवान से प्रेम करने का अधिकार है, क्योंकि भगवान ने प्रेम हमारे अंदर भर के भेजा है। वो प्रेम अगर हम ग्रह में दी बन के संसार के अंदर बांटेंगे तो कृपण हो जाएंगे, और वो प्रेम कृष्ण को दे जाए देंगे तो धीर हो जाएंगे। अब आपके पास प्रेम है, किसने दिया? भगवान ने दिया है, तो जिसने प्रेम दिया है उसी को दो ना, उसी को कहीं और बांटते हो, पहले तो चोर हो, पराया माल दूसरे को दे रहे हो, है कि नहीं? और झूठा नाम प्रेम का उसको देते हो, प्रेम है ही नहीं वो। यन्मैथुन आदि यथमयन मैथुन आदि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम, ये तुच्छ सुख है। और कैसा है? कांडुर्ये न, इसकी क्या जरूरत क्या है? एक ऐसा ये हमारा जैसे हाल है, ऐसा एक बहुत बड़ा हाल था जिसमें इसमें तो एक दरवाजा है, बाकी खिड़कियां हैं, ऐसे 84 लाख दरवाजे थे और सब बंद पड़े थे, एक खुला था, जैसे इसमें एक खुला है। एक व्यक्ति उसमें बेचारा अंदर बंद था, आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा इससे निकलना चाहिए, कब तक मैं इसमें रहूंगा? बोला दीवार पे हाथ रख देते हैं, तुम जाते जाओ, जो दरवाजा आगे आएगा वो बंद होगा, एक दरवाजा खुला है, जब देख जाए तो निकल जाना, कोई नहीं रोकेगा। वो जा रहा था, एक दरवाजा बंद आया, आगे चला, दूसरा बंद आया, आगे चला, तीसरा बंद आया, आगे चला, जो खुला दरवाजा आने वाला था उस समय खुजली हो गई। उस समय खुजली हुई तो जो हाथ दीवार पे था वो हटाया, यहां है करे, यहां है कर, कर का मतलब हाथ कहते हैं, कर हाथ को कहते हैं, करबद्ध प्रार्थना कहते हैं ना, कर हाथ को कहते हैं। वो हाथ दीवार से उठाया और खुजली करने लगा, जब खुजली करने लगा तो पांव तो चल गया, पांव चल गया, दोबारा हाथ रखा तो दरवाजा बंद आ गया, क्योंकि खुला खुला तो निकल गया। क्यों निकल गया? बोला खुजली करने लग गया, हाथ वहां से हटा लिया। तो ये जो श्लोक है इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं ये मानव जन्म खुजली के लिए नहीं है, कबूतर के जन्म में करते रहना कुत्ता बिल्ली वाला काम, कोई मना नहीं करेगा, और बहुत सी जूनियां मिलेंगी, लेकिन ये इस काम के लिए नहीं है, ये खाली दरवाजे से बाहर निकलने के लिए, इसलिए उस वक्त खुजली नहीं करना। इसको क्या करना? कंडुवत, उसको बर्दाश्त कर लेना, उसको सह लेना, उसको सह लेना। लेकिन ये खुजली ऐसी है, अब कभी मच्छर काटता है ना, कोई ऐसे मक्खी बैठती, हमारे ये हमारा स्वभाव बना है कि जाके उसको ऐसे करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका मतलब ये सामान्य संसार में खुजली होने को खुजाना है, ये नेम है, लेकिन यहां कहता है मत खुजाओ। क्यों मत खुजाओ? बोला और ज्यादा पीड़ा देगा, तो क्या करो? बोला सह लो, थोड़ी देर के बाद खुजली खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात इसी प्रवचन के ऊपर प्रश्न ये पूछा गया, और ब्रह्मचारी ने पूछा, कि हम जब ये सो, हम तो बड़ा प्रयास करते हैं, साधन करते हैं, कहते हैं कि ये खुजली खत्म हो जाती है, ये खुजली खत्म तो होती नहीं है, कैसे न कैसे अंदर में इसका विचार आता रहता है। ये प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि ये काम की वासना कब खत्म होगी? प्रभुपाद ने कहा जब मरेंगे तब। इसका मतलब कि इस खुजली को सहना है, जब तक जिएंगे तब तक। ऐसा नहीं है कि 10-12 साल हरे कृष्ण जपेंगे तो खुजली चली जाएगी, नहीं जाएगी, वो अंदर उठती रहेगी। क्या करना चाहिए? अच्छे माहौल में रहना चाहिए, अच्छे संग में रहना चाहिए, कि हमारा खुजली का मन हो तो हमारा साथी हाथ पकड़ ले कि भाई नहीं करने का, रुक जा। अच्छे संग में रहना चाहिए। यह भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, कौन सा? शक्नोति यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। पढ़ा है कभी? ये दो श्लोक पांचवें अध्याय के हैं। और किसी नई जगह पे हम सत्संग करने जाते हैं तो कभी कोई कहते हैं क्या विषय, तो हम कहते हैं दुख का कारण सुख का साधन। एक श्लोक है दुख का कारण, दूसरा है सुख का साधन। इन दो श्लोकों के ऊपर ये चर्चा होती है। तो सुख के साधन का श्लोक क्या है? शक्नोति, शक्नोति का मतलब बर्दाश्त कर सकते हो, सह सकते हो। सोढ़ुम का मतलब सहना। अगर तुम में सहने का सामर्थ्य है, क्या? काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम से और क्रोध से जो वेग आता है, ये सब वेगों में आता है, ये काम वेग है। फिर क्या लिखा है? कब तक? प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक ये शरीर समाप्त नहीं होता है तब तक सहना पड़ेगा, आजीवन सहना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने उसको क्या उदाहरण दिया था? बीरबल और अकबर का। अकबर को कहा कि जब तक, बोला कैसे आदमी, तो बुढ़ापे में काम तो खत्म होना चाहिए ना। बोला नहीं होता। बोला प्रमाण दो। बोला शहनशाह अपनी नौजवान लड़की के साथ अस्पताल चलो। अस्पताल में गए, एक 80 साल का मरने को लगा, मरने वाला था, कैंसर थी कि मरेगा, और जाके कहा कि ये आपसे मिलने आए हैं शहनशाह, ये तो राजा आए हैं, ये मंत्री आए हैं। वो दोनों को नहीं देख के वो लड़की को देख रहा था। जो बीरबल ने कहा देखो महाराज किसको देख रहा है? बोला ये क्या है? बोला ये देखो, मरते भी इसके मन से ये भोग की वासना नहीं गई, अंत समय भी ये जाने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि ये खुजली रहेगी, इसको सहन करना सीखना। और सहन करना सीखने के लिए एक ही साधन है, आपको अच्छा संग चाहिए। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कल्चर एंड एजुकेशन, इसके लिए चाहिए अच्छा सभ्य समाज और शिक्षा। अगर शिक्षा और सभ्य समाज में रहेंगे तो इससे बचना संभव है, नहीं तो ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है सबके साथ नहीं है, ये खुजली सबके अंदर है। जो सहते हैं वो धीर है, विषहेत धीरा का मतलब सहने वाला, ऐसे नहीं खुजली चली जाएगी, उसको सहना आना चाहिए। और कुछ समय सहेंगे तो दुख कहां चला जाएगा, क्योंकि नहीं तो दुख आएगा इसके बाद, भारी दुख इसके साथ जुड़ा हुआ है, उस दुख से बच नहीं सकते। तो इस श्लोक में जो बात कह गई है, एक तो गृह मेधी, इसका मतलब आश्रम, गृहस्थ आश्रम में होना चाहिए, और प्रभुपाद की सरल भाषा में संतान उत्पत्ति के लिए जो काम भाव है वो धर्म के विरुद्ध नहीं है, गीता कहती है। गीता में साफ लिखा है धर्मा विरुद्धो कामो अस्मि भर्तृषभ प्रजनस्य कंद्रप चास्मि, ये भी भगवत गीता है। कंद्रप जो जो सृष्टि करना कर लिए, जो काम वासना है, इसका मतलब ये खुजली भी मेरा ही स्वरूप है, इसका अगर सदुपयोग किया जाए तो, इसका सदुपयोग किया जाए तो ये मेरी विभूति है। वहां विभूतियों में है काम प्रजनस चश्मी, 10वें अध्याय में होगा, कहां है? हाँ 10वें है ना, प्रजनस चश्मी कामो अस्मि, ये भगवान की विभूति है। और ये धर्म के तो खुजली है, तो इसका सदुपयोग है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग गृह में दी है, सदुपयोग गृहस्थ आश्रम है। अभी आखिर बनाई तो भगवान ने है ना, तो कोई उसका उपयोग होना चाहिए ना, वो काय के लिए बनाया है। बाहर से कोई गिफ्ट का बॉक्स किसी के लिए आया तो घर में पहुंचा तो उसने कहा मैंने मंगाया था ये मेरा फोन होगा, दूसरे ने कहा नहीं नहीं मैंने मंगाया था ये मेरे पढ़ने का किंडल होगा, तीसरे ने कहा नहीं मैंने मंगाया था ये होगा। तो उसने कहा पहले खोल के पढ़ो तो सही, अंदर है क्या और किस काम के लिए है। जब खोल के पढ़ा तो उसमें कोई और ही चीज थी और कुछ और ही उसके लिए लिखा था, मानो ये समझ लो। तो ये शरीर हमको क्यों मिला है? कोई कहता है भोग करने के लिए मिला है, कोई में कहता है कि खाओ पियो मौज करो, कोई कहता है ये करने के लिए। अरे शरीर बनाने वाले ने क्या लिखा है, किस काम के लिए है ये? भाई शरीर बनाने वाले के लिए क्या का है, किस काम के लिखा है लिए बनाया ये? भाई जिस भगवान आपने बनाया, भगवान ने बनाया है ना संसार, तो उसने काय के लिए बनाया, उसका क्या उद्देश्य है? तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्रो दिव्य तपस्या करो, ये है भगवान ऋषभ देव का उपदेश के जगत बनाया काय के लिए? दिव्य तपस्या के लिए। दिव्य तपस्या के लिए बनाया है, सुख भोग के लिए नहीं लगा। इस ये श्लोक में और क्या शब्द है? तपो दिव्यम पुत्र का, ये न सुखम। इसका पहला श्लोक क्या है? पहला क्या है इसका? ये पांच का एक ही होगा ना, नायम देभाज निर्लोके कष्टान कामान विड़भुजान। अब ये श्लोक को पढ़ के समझना चाहिए कि मानव जन्म क्यों मिला है। भाई कुत्ते बिल्ली सुअर की तरह भोग के लिए नहीं मिला है, जो आओ खाओ और जैसे चाहो वैसे करो, इसके लिए नहीं मिला है। बोला काय के लिए मिला है? तपो देव्यम पुत्र का, बेटा दिव्य तपस्या करो। तो हम इसको कहते तपस्या तो सभी कर रहे हैं लेकिन दिव्य कोई नहीं कर रहा है। भाई तपस्या कितनी बड़ी करते हैं, जब बंबई के लोग लोकल ट्रेन में हिरणाकश की तरह लुट के हुए जाते हैं, तपस्या नहीं है? 2 घंटे ऐसे खड़ा होना तपस्या है कि नहीं है? तपस्या तो वो भी कर रहे हैं पर दिव्य तपस्या नहीं है। दिव्य तपस्या का मतलब आत्म के उद्धार, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवत भक्ति के मार्ग के ऊपर तपस्या करना। जैसे आप भागवत सुन रहे हैं घंटा रोज बैठ के, रोज भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, ये दिव्य तपस्या है। एकादशी का व्रत है, ये दिव्य तपस्या। तो दिव्य तपस्या करना चाहिए। तो ये खुजली होगी तो सही, खुजली नहीं जाएगी लेकिन आपको सहने की शक्ति आ जाएगी, सहने की शक्ति आ जाएगी। अब अच्छा साथ होगा तो आपको ये खुजली सताएगी नहीं। तो इसके लिए जैसे कभी नया बोते हैं कोई पौधा, तो चारों ओर से कांटों की बाड़ लगाते हैं कि इसको कोई उखाड़ न जाए, पशु आके इसको। ऐसे हमारी भक्ति की रक्षा के लिए अच्छे भक्तों का अगर हमारे को बाड़ होगी ना कांटों की, तो हमारी भक्ति को ऐसे खुजली को कोई जो उत्तेजित करने का वातावरण नहीं बनेगा। और ये खुजली सबके अंदर है, इसके लिए एक उदाहरण देके आपके लिए 2-5 मिनट रखते हैं प्रश्न के लिए। अजामिल ब्राह्मण शादीशुदा सुंदर पत्नी घर में, सालंगराम नारायण शिला घर में, उसकी पूजा रोज करता है, अभिषेक रोज करता है और लकड़ी और फूल लेने गया, लेकिन वैशा को एक लंपट के साथ आलिंगन करते देखा तो वो जो खुजली थी वो खुजाने का मन किया। बताइए, वो धर्म के ऊपर नहीं चल रहा था, उच्च कोटि का जन्म ब्राह्मण का मिला था, घर में पूजा पाठ की सामग्री थी और गया भी पूजा के काम से था, लेकिन वो दुष्ट के ऊपर दृष्टि पड़ी तो वो खुजली करने के लिए मन किया। फिर कहा नहीं करनी चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे नहीं करनी चाहिए। फिर कहता है, आंखें बंद कर ली, फिर बोला एक बार देखने में क्या है। ये है असल में, ये खुजली इसको बढ़ाने में हमारे को एक शब्द और इसमें आया है, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर पाया। ये शब्द है मनुजम। ये खुजली कहां से है, ये सुख कहां से? मनुजम, मन से जन्म लेता है, आत्मा से नहीं। आत्मा से तो आनंद जन्म लेता है, वो तो भगवान की भक्ति में आता है, ये मनुजम है। प्रभुपाद ने कहा यह तथा कथित है ये वास्तविक नहीं है, ये मनोजम है। तो ये मनोजम जो सुख है, इसको मनोधावते मनोरथे, ये मनोरथ वाला सुख है। वो कौन सा श्लोक है? यस्यासि भक्ति भगवता अकिंचन सर्वे समासिते सुरा गुणः मनोरथे धावतो। जो मन ये जो ऐसे भागते हैं उनको कहां से आया ये? उसके अंदर अच्छे गुण कहां से आया? वो तो कृपण है। ये जो मनोरथे धावते, ये मन से उत्पन्न होने वाला है। अब हमारे बार बार जन्म लेने का कारण ये मन है ना कि नहीं है? बार बार एक जूनी से दूसरे जूनी में ले जाने का कारण है ये मन। और ये मन भगवान भगवत गीता में कहते हैं मेरी विभूति है, कहते हैं ना, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। तो ये मन केवल भगवान के चरणों के स्मरण में शांत होगा, और कहीं भी लगाओ कभी नहीं शांत होगा। अभी कभी एक महात्मा कहता है, आप घर वालों को कहो हमारा मन ले लो, कहेंगे नहीं चाहिए तेरा मन, लाओ धन। मन को कौन, किसको मन चाहिए? अरे आप किसी को मन दो कोई लेगा क्या? बोला मन को क्या करेंगे, ले अपना, मन नहीं चाहिए। एक भगवान ऐसा है कहता तेरा मन मेरे को दे दो, और कोई आपका मन लेने वाला नहीं है, क्योंकि मन के अंदर तो चिंताओं का भंडार भरा है, कौन लेगा आपके मन को? लेकिन भगवान ऐसे आपके हितेशी है, सौहृदय, कहते मैं अर्पित मनो, तेरा मन मेरे को दे दो। मन एक भगवान लेते हैं और कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसी की विभूति है। और ये जब भगवान के पास मन जाएगा तो उसके अंदर ये तुच्छ दुख उत्पन्न नहीं होंगे। फिर भगवान जब मन लेते हैं ना, तो उसके साथ एक और हाथ, एक हाथ में जब लगाम पकड़ते हैं ना घोड़ों का, तो लगाम भी तो मन है ना, वो तो उल्टे हाथ में पकड़ते हैं, सीधे हाथ में क्या पकड़ते हैं? चाबुक पकड़ते हैं। तब फिर खुजली होगी, तब धड़ाम से मारेंगे, ठा, कहां जा रहा है, तब भागने नहीं देंगे। कब? जब मन भगवान को अर्पण करोगे तो खुजली होगी, तो उनके हाथ में जो तोत्रे वही त्रै कपाणई, भगवान के हाथ में जो तोत्र और वेत्र है, वेत्र है चाबुक और तोत्र है लगाम, तो हमारे इंद्रियों के घोड़े जो खुजली के कारण हमारे को भटकाते हैं वो भटकेंगे नहीं। क्या बात कह रहा था वो, कह के फिर कथा समाप्त कर रहा हूं, बीच में ये मन वाली बात आ गई। हाँ, अजामिल, अरे देखने में क्या है, एक बार देख लेता हूं बस। ये काम आंख के द्वारा अंदर जाता है, प्रायः आंख के द्वारा। इसलिए राम जी जब सुरपंखा सज धज के आई थी ना, तो सीता की ओर नजर करके लक्ष्मण को कह रहे थे इससे बात करो, उसको देखा भी नहीं था, बोला ये दृष्टि, उसके ऊपर दृष्टि डाली ही नहीं। क्यों? काम आंख के रास्ते से आता है, उसने देखा, देखने में क्या है, तो फिर छूने में क्या है? पर फिर ये मनोजा, फिर मन से उत्पन्न वाली सारी श्रृंखला शुरू हो जाएगी। फिर बोला कोई बात, एक बार खुजाने में क्या है, एक बार खुजाने में क्या है, एक बार खुजाने में क्या है, एक बार और कर लेते हैं बस। उसके बाद जख्म हो गया तो फिर कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज की यह शिक्षा समाज को सही रास्ते पे लिए चलाने के लिए है। उद्देश्य हमारा क्या है? परम सुख को प्राप्त करना है। उद्देश्य हमारा आत्मा को भगवान की सेवा में लगाने का है। इस शरीर के भोग का उद्देश्य नहीं है। ये शरीर है जब तक ये खुजली रहेगी, लेकिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, उससे पहले इस खुजली को छोड़ दे तो भगवान की प्राप्ति संभव है। हरे कृष्ण। एक प्रश्न किसी का कोई है तो पूछ लीजिए।
आपके प्रवचन मैंने बहुत बार सुना, लेकिन आज का तो ऐसा लग रहा है जैसे रिकॉर्ड तोड़ प्रवचन।
क्या बोला माता जी ने?
आपका प्रवचन हर समय सुनते हैं, पर आज का जो प्रवचन है ऐसा लग रहा है कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया।
हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।